कई जगहों पे इंडिया के लगभग 20 स्टेट में हर जगह गया, कहीं टीचर, कहीं सुपरवाइजर, कहीं इलेक्ट्रीशियन, कहीं कॉल ऑपरेटर, सब तरह के जॉबों में अपना समय बिताया। उसके बाद में मैं बहुत धार्मिक क्रियाकलाप करता था। आप लोग जानते होंगे कि हिंदू धर्म में क्या क्या चीजें होती हैं। मैं हिंदू धर्म का कट्टर था, हिंदू ही बढ़िया है। गांव में मुझे लोग बोलते थे कि यह तो एक पंडित है। आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है हिंदी समझने में? कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, माफ कीजिएगा, मेरी इंग्लिश मजबूत नहीं है। या तो मैं रामायण, महाभारत, वेद, पुराण सब कुछ को पढ़ता था। गांव में सब लोग बोलते थे, गलती से तो लोहार परिवार में आ गया है। आप जानते होंगे लोहार, बढ़ई परिवार, उस परिवार में मेरा जन्म हुआ था। लेकिन सब लोग मुझे पंडित कह के बोलते थे कि वो अच्छा पुराण और वेद का पाठ करता है। मैं जब बाहर भी निकलता था तो मैं अपने धर्म को साथ नहीं रखता था, पूजा पाठ और सब चीज करता था। और ऐसी प्रॉब्लम ओके तो थोड़ा सॉरी फिर मैं वैष्णो देवी, आप लोग जानते होंगे जम्मू तवी में जो वैष्णो देवी है, वहां मैं एक पैर से चढ़ता था। मेरे पास ये प्लास्टिक का पैर है, आर्टिफिशियल फुट, लेकिन मैं 25-26 किलोमीटर की चढ़ाई, पहाड़ की चढ़ाई, चढ़ना उतरना, धर्म में एकदम डूबा हुआ था। और हमेशा ईश्वर से प्रेम रखना और सच्चे ईश्वर की खोज करना मेरी एक आदत बन चुकी थी। कई जगहों पे मैं खोजता था कि मैं इतना परेशान होता हूँ, मेरे माँ बाप मुझसे दूर रहते हैं, मैं कमाता हूँ पैसे उनको भेजता हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मैं अकेला हूँ। मैं ईश्वर को यदि जानता हूँ, ईश्वर यदि है तो प्यार मुझे कहाँ है? सब लोग तो दुनिया में अपने आप मस्त हैं, लेकिन जो प्यार मुझे चाहिए था वो प्यार की खोज थी मुझे। मैंने सोचा शायद दूसरे धर्मों में मिले। मैं कुरान को भी पढ़ा, कुछ मुस्लिम दोस्त थे मेरे कंपनी में, उन लोगों ने सजेशन दिए कि आप कुरान को पढ़िए। कुरान को भी मैंने पढ़ा, लेकिन कुछ गलतियां उनमें होने के बावजूद उसको मैंने छोड़ा। फिर मैंने नेट पर सर्च करना शुरू किया, हु इज गॉड, गूगल सर्च, और गूगल में तो बहुत सारे ईश्वर आने लग गए। हम कहिए तो सारा बात यही है, मेरा भी यही हाल है, इतने सारे ईश्वर तो हम भी जान रहे हैं। मैं फिल्मों में हर ढंग के ईश्वर को देखता था। फिल्म एक आई थी, उसमें मैंने ईसा मसीह को भी देखा, और इंटरनेट पर भी मैंने वो जीसस के बारे में पढ़ा। मुझे लगा मैं तो हिंदू धर्म को जाना, इस्लाम धर्म के कुरान को भी थोड़ा पढ़ा, क्रिश्चियनिटी क्या है मुझे जानना चाहिए। यदि मैं जानूंगा तो पता चलेगा कि ईश्वर सही में है या नहीं है या कौन है। ये सोच करके मैं चर्च में गया, और जहां पर मेरी कंपनी थी उसके पास में एक चर्च थी, CNI चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च थी। वहां मैं गया, वहां के पादरी साहब थे, उनसे मैंने मिला। मैंने पूछा मुझे फादर से मिलना है, मैंने फिल्मों में देखा था चर्च और फादर, पास्टर शब्द भी नहीं पता था, और टी शर्ट पहन करके आए। मैं बोला कि मुझे तो फादर से मिलना है, आपसे नहीं मिलना है, और ड्रेस चाहिए, व्हाइट ड्रेस। बोल रहे मैं फादर हूं, मैं पास्टर हूं, बताइए। मैंने अपनी बातों को उनके साथ शेयर किया और उन्होंने मुझे गॉस्पल सुनाया, नया नियम दिया, मैंने उसको पढ़ा। उसके बाद मुझे इंटरेस्ट जगी, मैंने पूरी बाइबल को पढ़ा, और बाइबल पढ़ने के बाद में मैं एक निर्णय लिया कि यीशु ही ईश्वर है और यीशु ही मेरा उद्धार करता है, हालेलुया। और मेरी जो खोज थी वहां संपूर्ण हुआ कि ईश्वर यीशु ही है, और जो प्यार मैं खोजता था वो प्यार मुझे वहां मिला। यीशु ने लहू बहाया, वो मरा, मेरे लिए मरने वाला कोई नहीं था, यहां तक कि हाय कहने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं वहां एहसास किया कि यीशु ही मेरा प्रेमी है, मेरा परमेश्वर है। उसके बाद गुजरात में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बपतिस्मा की। मैं यीशु को जाना स्वीकार किया, बपतिस्मा नहीं हो सकती आपकी,
धर्म परिवर्तन होगी, गवर्नमेंट आपको पकड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, कोर्ट में जाओ, नोटिफाई कराओ, बहुत सारी प्रॉब्लम। लेकिन वहां के जो पास्टर थे उससे बहुत प्रेम रखते थे, और गुजरात में ही मेरी सीक्रेट बपतिस्मा हुई, बहुत सीक्रेट रखा गया, बपतिस्मा हुई। फिर मैंने वो जॉब को छोड़ा, सुपरवाइजर की जो जॉब थी, मैंने सोचा कि इसमें बहुत मैं गाली बोलता हूं, मुझे बदलना होगा। पहले भी मेरा जीवन खराब था, धर्म धार्मिकता की काम करता था, गाली बोलना और गलत काम भी शुरू था। बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे तो अब चेंज होना है। वो जॉब को मैं छोड़ा, बहुत अच्छी सैलरी थी लेकिन मैं छोड़ा। उसके बाद प्रभु ने मुझे एक अच्छा जॉब दिया, कॉलेज में क्लर्क का जॉब किया, लेकिन साथ साथ मैंने मिनिस्ट्री का काम शुरू किया। मुझे नहीं पता था कि मिनिस्ट्री क्या होती है, लेकिन मैंने बाइबल में पढ़ा कि यीशु ने मुझे बचाया है तो मुझे भी बोला है कि तुम दूसरों को बचाओ, और वही बात मैंने दूसरों को बताना शुरू किया कि यीशु जिंदा है, आप आइए, आप जानिए। और मेरी इन बातों को देख करके जो पास्टर थे खुश हुए और मुझे बोले कि क्या ईश्वर तुझे कुछ कहता है। मैंने बाइबल में पढ़ा, मैं खुद से सोचा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। मैं अपने पास्टर से बातचीत किया कि मैं अभी सब कुछ से अनजान हूं, मैं ज्यादा नहीं जान रहा हूं, मैं सिर्फ यीशु को जाना हूं, और कॉलेज में या बाहर में लोगों को इसलिए बताता हूं क्योंकि मेरा दिल कहता है कि तुम दूसरों को बताओ। मैं भी पहले नहीं जानता था, यदि कोई मुझे बताता तो मैं इतना परेशान नहीं होता, इतना खोजता नहीं मैं। उन्होंने बताया कि ठीक है, आप सेवा का काम शुरू कीजिए, आप कुछ ट्रेनिंग लीजिए। मेरी वहां बाइबल ट्रेनिंग हुई। बाइबल ट्रेनिंग होने के बाद में वहीं पर एक चर्च में मैं मिशनरी के रूप में कार्य शुरू किया। थोड़े दिनों के बाद में मुझे एक एहसास हुआ कि ईश्वर ने मुझे बिहार के लिए तैयार किया है। मैं एक बिहारी आदमी हूं, बिहार में लोग ईश्वर को नहीं जानते, और ईश्वर ने मुझे बिहार के लोगों के लिए तैयार किया है। यहां वो मुझे लाया, लेकिन मुझे अब वापस जाना होगा, मुझे बिहार जाना होगा और बिहार के लोगों को बचाना होगा। उसके बाद मैं रिजाइन दिया अपने CNI चर्च, वहां के ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन दे करके वहां चला गया। वो लोग समझाए कि बेटा मत जाओ यहां से, हमने आप पे काफी मेहनत किया है, हमने आपको संभाला है, और आप यहां अच्छा है, आप सेट है, आप यहीं सेवा कीजिए। यदि आप बिहार जाते हैं तो वहां की डायोसिस अलग है, वहां की व्यवस्था अलग है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने फाइनली किया कि नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा, यहां नहीं रहूंगा, मैं तो बिहार ही जाऊंगा। वो व्यवस्था, सपोर्ट, लोगों का प्रेम, वो तो परमेश्वर ने मुझे दिया है, अब ये बातें बिहार के लोगों को चाहिए। और डिसाइड करके मैं बिहार आ गया। मेरे मम्मी पापा मुझे एक्सेप्ट नहीं किए, मेरे साथ मेरी पत्नी थी। और बिहार में जब मैं यहां से गुजरात से गया, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी। मेरे पापा बोल रहे हैं कि तुम तो मुसलमान हो, वो जानते ही नहीं कि ईसाई धर्म क्या होते हैं, यदि तुम हिंदू नहीं हो तो तुम मुसलमान हो गए हो, तुम जाओ, तुम मेरा बेटा नहीं है और मेरी बहू नहीं है, तुम लोग जहां जाना है वहां जाओ। कोई एक्सेप्ट नहीं किए। हम लोग एक रेंट का रूम लिए, वहां एडजस्ट किए, धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था को सुधारे, ट्यूशन सेंटर शुरू किए, होम ट्यूशन जाकर पढ़ाना शुरू किए, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री करना शुरू किए, लोगों को यीशु के बारे में बताना शुरू किया। बहुत तकलीफ हुआ शुरू में, बहुत सारी तकलीफें थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला, सामर्थ्य दिया, और अच्छी कलिसिया वहां तैयार हुई है। हमने वहां पर दो चर्च तैयार हुई और 6-7 होम चर्चेस चलती है। लोग पहले बहुत विरोध करते थे, मारना है। कभी वहां के लोग बोलते हैं इसका एक पैर नहीं है, दूसरा भी तोड़ दो। बहुत लोगों को कुछ पता नहीं, बोलते अमेरिका से इसको पैसा मिलता है, ये धर्म परिवर्तन करवाता है। अमेरिकन लोग इनके साथ है। कुछ लोगों को जो लोग क्रिश्चियन धर्म में आए उनसे भी पूछते हैं, तुमको क्या कमी लगी थी हिंदू धर्म में जो तुम क्रिश्चियन धर्म में गए। जो लोग यीशु के पास आए उसको भी भरमाने का काम करते थे, लेकिन बहुत लोग स्थिर रहे कि नहीं, यीशु ही उद्धार करता है। और अच्छी कलीसिया का निर्माण हुआ। साइकिल से हर जगह जाना, लोगों को सुसमाचार सुनाना, फिर बाद में हमने एक प्रोजेक्टर लिया कि वहां के लोगों को मैं फिल्म दिखा सकूं। वहां के लोग अनपढ़ है, पढ़ नहीं पाते हैं, वो भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हिंदी बोलेंगे। तो हमने फिल्मों का रास्ता चुना कि फिल्मों के द्वारा उनको बताया जाए, और फिल्मों के द्वारा बहुत अच्छा कार्य हुआ। आप लोग यहाँ देखेंगे वहां के कार्यों को, बहुत अच्छा फिल्म के द्वारा कार्य हुआ है। लोग बपतिस्मा लिए, लोग प्रभु के पास आए, लोग ने पश्चाताप किया। और आज एक वहां अच्छी सेवकाई अभी चल रही है। मेरे साथ मेरी पत्नी है, प्रभु ने मुझे एक बेटी दिया है, 2 साल की एक बेटी है। मेरी पत्नी महिला संगति चलाती है, वुमेन फेलोशिप, वो भी प्रभु के कार्य में आगे है। और हम लोग वहां बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं। आपसे विनती है, आप बिहार के लिए निश्चित प्रार्थना कीजिए, हमारी सेवाओं के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करें। कुछ वचन को हम पढ़ेंगे, आप बाइबल में निकालेंगे जॉन 1:14। कोई भी व्यक्ति खड़े होकर के उसको पढ़ेंगे पूरा। ये जो पंक्तियां हैं, ये जो वर्सेस है, वचन देहधारी हुआ और हमारी, हमने उनकी महिमा देखी। इसमें जो हम डीपली जाएंगे, थोड़ा हम ध्यान देंगे, तो इसमें प्यार का 3 अर्थ आता है। क्या आप मुझे वो बताएंगे, प्यार का 3 कार्य यहाँ देखने को मिल रहा है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस। इस लाइन में प्यार का 3 कार्य बताया गया है। जब उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक कार्य आती है कि वचन देहधारी हुआ। उसको जब हम गौर से समझेंगे, स्वर्ग में बहुत सारा आनंद है। क्या आप महसूस करते हैं? महसूस करते होंगे या आपको अंदाजा होगा, स्वर्ग में आनंद ही आनंद है। बाइबल में लिखती है वहां न रोना होगा, न दांत पीसना होगा, वहां सिर्फ आनंद ही होगा। मैंने जब पुणे में आया, मैंने पास्टर स्टीफन के घर में, मेरे ब्रदर प्रदीप के घर में, कई जगहों पे मैंने देखा लग्जूरियस लाइफ, अच्छा है रहना, खाना पीना सोना, लेकिन इससे भी बेहतर स्वर्ग है। यहां से भी आरामदायक जगह वो है, ये आरामदायक जगह नहीं है, इससे भी आरामदायक जगह वो है। लेकिन उस जगह को छोड़ के ईश्वर ने अपना देह बनाया और उस जगह को छोड़ा। कभी कभी ऐसा महसूस होता होगा कि इस अच्छा जगह को छोड़ के हम क्यों पूरे जगह पे जाएं। कभी कभी आपको यदि रूम चेंज करना हो, यदि अभी जिस तरह का रूम है उस तरह का यदि रूम न मिले, उस तरह का फ्लैट न मिले, तो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। नहीं, वहां बेहतर नहीं है, हमें अच्छा बेहतर अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन यीशु ने वो नहीं देखा, स्वर्ग अच्छा है, मैं कैसे धरती पे जाऊं। वो देह बना, और सिर्फ देह ही नहीं बना, वह हमारे साथ रहा। आप आगे पढ़ते हैं तो लिखता है, हिंदी में लिखा हुआ है, हमारे बीच में डेरा किया। डेरा किया का मतलब है हमारे साथ में रहना। मैं बिहार से आया और चला गया, वो बात नहीं थी, आया और रहा। यीशु ने पहला कार्य किया, वो डिसीजन लिया कि मुझे स्वर्ग छोड़ना है, धरती पे जाना है, मुझे देह बनना है। दूसरा जो प्रेम का कार्य है कि मुझे मेरे बीच में रहा है वो। कभी कभी आप जाते होंगे तो गांव साइड में या गरीब बस्ती में, वहां स्मेल आती होगी, गंध आती होगी, कहीं गाय भैंस की गोबर की गंध आती होगी, कहीं लोगों की गंध आती होगी। यीशु भी जब हमारे बीच में आया था, क्या उनको गंध आई होगी? आई होगी। स्वर्ग का जगह छोड़ करके इस धरती पर आना, हमारे चोरी की गंध आई होगी, हमारे झूठ की गंध आई होगी, हमारे पाप की गंध आई होगी। बट फिर भी उन्होंने क्या किया? मेरे लिए, मेरे बीच में रहा। फाइनल जो काम उन्होंने किया, उसने मेरे लिए अपनी जान दी। वो अपनी महिमा दिखाया, पिता की महिमा को दिखाया, उसने जान तक दे दी, कुछ भी नहीं रख सोरा। जीसस इज गुड मिशनरी, वो एक अच्छा मिशनरी है। ईश्वर ने उसको भेजा, पिता परमेश्वर ने यीशु को इस दुनिया में भेजा, और यीशु ने हम सबको भेजा है। क्या आप जानते हैं इस बात को? नहीं जानते हैं? यीशु ने आपको भी भेजा है, क्या आप महसूस करते हैं? नहीं? मत्ती 28 अध्याय निकलिए, मत्ती बुक ऑफ मैथ्यू 28 चैप्टर। यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम जाओ जाओ, वो बोला है जाओ, आप चेले हैं उनके, चेले हैं ना, वी आर डिसाइपल ऑफ जीसस, सब लोग आप लोग यीशु के चेले हैं। आप हम यहां बैठे सब लोग प्रभु यीशु के चेले हैं, और यीशु ने चेलों से कहा तुम जाओ। तो किससे कहा? हमसे कहा, आपसे कहा, आप जाओ। आपको बीमारी है, कोई बात नहीं, आपके पैर नहीं है, कोई बात नहीं है, आप जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि आप मेरे चेले हो, ये मेरी आज्ञा है, तुम जाओ। कुछ लोग कहते हैं कि आज्ञा मानना बहुत अच्छा बात है, मैं सब आज्ञा मानता हूँ, झूठ नहीं बोलता, चोरियां नहीं करता, लेकिन ये आज्ञा कहां मानते? हम जाते ही नहीं है, अपने काम में बिजी हैं। भाई और बहनों, यदि हम अपने काम में बिजी रहेंगे तो ये आज्ञा को हम छोड़ देंगे, तो हम धर्मी ठहरेंगे? धर्मी ठहरेंगे? निश्चित है कि हम हरेक आज्ञा को माने। यीशु के प्यार की सबको जरूरत है। जब तक आप नहीं जाएंगे, या हम नहीं जाएंगे, या प्रभु यीशु के शिष्य चेले नहीं जाएंगे, तब तक लोगों को प्यार नहीं मिलेगा। आज बहुत लोग प्यार के लिए तरस रहे हैं, मैंने महसूस किया, मैंने अनुभव किया, पत्नी है, बच्चे हैं, जॉब है, फिर भी वो अकेला है। क्यों अकेला है? उसका हृदय चाहता है कि हम प्रभु यीशु को जाने, लेकिन जरूरत है हमें जाने की, हमें जाना होगा। आपकी सोच, आपकी जो डिसीजन है आपके सोच के ऊपर निर्भर करती है, हमें करना है या नहीं करना है। हमारी आरामदायक जीवन, हमारी भोजन, हमारे परिवार सब यहीं रहेगा, लेकिन स्वर्ग में मुगट या स्वर्ग में जो इनाम है हमारी सेवाओं का दिया जाएगा, जो हमने लोगों के लिए किया है। दुख काटा, मुसीबत काटा, लेकिन प्रभु के लिए जो कार्य किया उनका इनाम प्रभु देगा निश्चित। और सबसे बड़ी जरूरत है कि आप लोगों के मददगार बनेंगे, लोग आपसे प्रेम करेंगे। भले थोड़ी यातनाएं होगी, थोड़ा दुख होगा, लेकिन एक खुशी होगी कि आपने लोगों को बचाया है। बहुत लोग हैं जो चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं उसे बचाएं। आप सब लोगों का धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, हमने अपनी गवाही आपके सामने प्रस्तुत कर पाया। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, प्रभु आप सबका बढ़िया उपयोग करे। थैंक यू वेरी मच।
Some photographs will just to show us a little bit about what he's doing there.
ये बपतिस्मा की फोटो है, वहाँ नदी में बपतिस्मा दे रहे हैं। साइड एरिया में ले जा करके नदी में बपतिस्मा देना है। मैं बपतिस्मा के समय पैर खोल करके क्रचेस का यूज करता हूँ पानी में, तो ऐसी वहाँ बपतिस्मा हो रही है। बच्चों की सर्विस, बच्चों के लिए उनको प्रार्थना करना सिखाना, और मेरी वाइफ वो भी बच्चों को सिखाती है। वो खुद पढ़ी लिखी नहीं है, फाइव क्लास ओनली फिफ्थ क्लास पढ़ी है, बच्चों को वो भी सिखाती है। ये बच्चे लोग डांस सीखते हैं, एक्शन सॉन्ग सीखते हैं, और जब करते हैं बहुत खुशी होती है, क्योंकि वहाँ के बच्चे सिर्फ भोजपुरी गाना गाते हैं, वो भी आप सुन नहीं सकते हैं, इतना खराब शब्द होते हैं उसके, लेकिन वो लोग प्रभु की वहां महिमा करते हैं। ये मेरी फैमिली और मेरी बेटी। आप देख रहे हैं ये फेलोशिप वहाँ चलता है, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में लोग बैठते हैं, उनके बैठने के लिए नीचे व्यवस्था है, लोग ऐसे समूह में ही बैठते हैं। यहाँ ऐसी फैसिलिटी उन लोगों को नहीं मिला है अभी, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा संगति उनको हो। कभी कभी उनको लैपटॉप पर या प्रोजेक्टर के माध्यम से कुछ संदेश उनको सुनाएं, कुछ अलग तरह से भी कुछ करके दिखाना अच्छा लगता है। बार बार मैं मैसेज दूं तो मैं सोचता हूं कि कभी कभी उनको डिफरेंट लगे, तो उनकी संगति भी अच्छी हो पाती है। ये जो सारी तस्वीरें हैं फिल्म शो की है, गांव में जाना और लोगों को फिल्में दिखाना प्रोजेक्टर के माध्यम से, रात को 10 बजे तक 10:30 तक ये लोग फिल्म देखते हैं। ये छोटा सा सिस्टम है हमारे पास, साउंड सिस्टम सब पोर्टेबल है, छोटा छोटा, जिसे हम साइकिल पर ले जाते हैं, कभी स्कूटी पे भी ले जाना होता है, तो एडजस्ट करते हैं हम लोग वहाँ। रात को लोग आते हैं, पिक्चर देखते हैं। ये जो फोटो है, मैंने अपना वीडियो को रिकॉर्ड किया मोबाइल से, रात के समय में वो लोग देख नहीं पाते हैं फेस, तो रिकॉर्ड करके प्रोजेक्टर पर दिया कि आप लोग छोटा संदेश को सुनिए। उसमें 5 मिनट का संदेश होता है कि आप प्रभु यीशु को जानिए और हमारी प्रार्थना का एड्रेस होता है। उस साल जब बाढ़ आई थी, आप लोग जानते होंगे बाढ़, गुजरात के कुछ लोगों ने मदद भेजा था कि आप वहाँ जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको आप मदद कर सकते हैं। तो वहाँ कुछ लोगों को ऐसे मदद दिया गया, वो प्लास्टिक का जो तिरपाल होता है, उनके घर बाढ़ में बह गए थे, लाइट, मलेरिया और कालाजार की बीमारी हुई थी, तो मॉस्किटो नेट ये सब उन लोगों को प्रोवाइड उस समय किए। गुजरात के जो लोग हैं सीएनआई चर्च के साथ उतना अब संबंध नहीं रहा है, लेकिन वहां के जो लोग हैं, चर्च के जो विश्वासी लोग हैं, वो हमसे काफी प्रेम रखते हैं और वो सब हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि आप तो यीशु का काम कर रहे हैं, संस्था मायने नहीं रखती है, मायने तो यीशु का प्रेम रखता है। वो हमारे लिए बहुत प्रेम करते हैं, हमसे हमारे लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। और मैंने उनको कई बार बोला बिहार आओ, कभी आप यहाँ कुछ प्रोग्राम करो, जैसे खुला प्रचार हुआ कि 1000-2000 लोग आए, तो नए लोग आएंगे लेकिन ना 1000 लोग प्रभु में आए, 1000 लोगों में 100 लोग तो प्रभु में आएंगे तो भी अच्छा होगा। तो आप लोगों से भी प्रार्थना है, आप लोग वहाँ के लिए प्रार्थना कीजिए, वहाँ के नए लोगों के लिए और पुराने लोगों के लिए। वो लोग जो नए लोग हैं वो प्रभु में आए, और जो लोग प्रभु में हैं वो लोग प्रभु में मजबूत बने, क्योंकि कई लोग उनको उठा ऊपर नीचे करते हैं, मत जाओ ऐसा वैसा डिसलेक्ट बोलते हैं, लेकिन प्रार्थना करें कि वो लोग स्थिर रहे और प्रभु हमें सामर्थ्य दे। थैंक यू।
रामनिवास He's often said that he knows nobody. He's just doing this work on his own, and he knows only one person. That's his brother Winfred, who's the pastor in Gujarat. Last year, that organized the youth conference that I went for, and that's where I met Ram Nivas. But I want to tell you ki hum aapke saath hai, right? I hope that as a result of today getting to know him, that we as a church come behind Ram Nivas, that he knows that there's a church that's behind him. What he's doing in Bihar. We don't want to tell him what to do, we just want to support him and pray for him. And I hope that you begin to see that life is much more than our jobs. Right? The Lord has given us a mission, and that the gospel of Christ spreads to all across our nation. That's what we're here for. Thank you. And so we're going to spend some time in prayer. This is our normal time of praying for each other. We can do that, but I want us to focus specifically on praying for all the things we've heard from Ram Nivas, the work in Bihar. Aapka gaon ka naam kya hai?
Sita Madhi.
Yeah. And?
Riga.
Riga. Right? Sita Madhi is the area, yeah. And Riga is the town. So, pray for the people there. There's a small group there, and there are a number of small groups that he keeps visiting through the week and ministering the gospel to. So let's break up into groups of twos and threes. If you have requests, you can share them in the group and pray for those things. But focus on praying for the spread of the gospel, praying for Ram Nivas and the wonderful work that God is doing through him. There's just a little bit of what he's doing, and it's amazing to see on his own that the Lord is blessing the gospel work. And so let's break up into groups. If you're not comfortable praying out loud, don't worry. You don't know what we're doing. You can just be there. You can share any requests you have, but let's take the next 10-15 minutes and do that.